आप अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को क्रिएट नहीं किया, आपके पास जो था आपने उसको मैनिफेस्ट किया, आपने उसको और बढ़ाया, पर आपके ही पास है। दूसरों दुनिया में करोड़ों लोगों के पास वो नहीं है जो आपके पास है। तो इसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। एक साधु रास्ते में जा रहे थे, उन्होंने देखा एक बच्चा भीख मांगता है, एक लड़का, कि बाबा ईश्वर के नाम पर 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो। साधु ने कहा, तुम क्यों भीख मांगते हो? बोले, मैं गरीब हूं तो क्या करूं, भीख मांगकर गुजारा करना पड़ता है। बोले, इतने बड़े धनी लड़का होकर के तू गरीब कैसे बोलता है? बच्चे को मजाक लगा। बोले, मैं कहां धनी, मैं तो रोज भीख मांग के गुजारा करता हूं ना। अच्छा, एक काम करो, मैं तुम्हें $2000 देता हूं, तुम अपने दोनों हाथ काट के मुझे दे दो। ये कैसी बात कर रहे हो, हाथे का? अच्छा चलो, हाथ नहीं देना, दो पैरों काट के दे दो, $2000 लो। बच्चा डर गया, बोले चलो $5000 ले लो, दो आंखें फोड़ के मुझे दे दो। अगर तुम्हारे एक एक अंग के हिसाब लगाया जाए तो करोड़ों डॉलर से भी ज्यादा है। भगवान ने तुम्हें पैर दिया, हाथ दिया, बुद्धि दी, मन दिया, देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दी, चखने के लिए जीभ दी, तो फिर कहां गरीब है? गरीबी हमारे व्यवहार में है। साधु ने कहा, जाओ अपने शरीर को प्रयोग करना सीखो, अपने दिमाग को लगाना सीखो, अपने शरीर को यूज करना सीखो, फिर जानोगे, और खुद पर भरोसा करना सीखो कि तुम कितना धनी हो, ईश्वर ने तुम्हें कितना धन देकर भेजा है। हमारी समस्या है, हम उन चीजों के लिए ज्यादा दुखी होते हैं जो हमारे पास नहीं है। अगला स्लाइड जलाएंगे। ईश्वर हर पल हमारे पर आशीर्वाद करता है, पर हमारी एक बीमारी है कि हम हर जो हमें मिला है हम उसको बिल्कुल ग्रांटेड समझ के ले जाते हैं, और हम इस मामले में बड़ा बिजी रहते हैं 24 घंटे कंपेयर करने में, मेरे से उसके पास ज्यादा है या मेरे पास अमुक चीज कम है, मुझे अमुक चीज लेना है और इसीलिए मैं दुखी हूं। मेरा सारा ध्यान उस पर है कि मेरे पास क्या कम है या मेरे पड़ोसी के पास क्या ज्यादा है, इसीलिए मैं किसी के प्रति कोई थैंक्स देने को तैयार नहीं होता हूं, और जो मेरे पास है उसके लिए मैंने कभी किसी को नहीं कहा थैंक्स। ऐसा लगता है मानो ये मुझे वैसे ही मिल गया, आई डिजर्व इट। जीवन में अनगिनत चीजें हमारे पास है, जो कुछ भी है वो दूसरों के कारण है। एक स्टेटमेंट है, अगला स्लाइड चलाएंगे, कि इंसान पाता है और भूल जाता है, ईश्वर देता है और माफ कर देता है। ये जो स्टेटमेंट है, इसी के कारण व्यक्ति दुखी है, परेशान है, क्योंकि जो हमें मिलता है हम उसको भूल जाते हैं, हमें वो याद रहता है जो हमें नहीं मिला, और इसीलिए हम खुद दुखी हैं। हम दूसरों को वो क्रेडिट नहीं देते कि दूसरों के कारण मिला, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि मैं अधूरा हूं, मैं करोड़पति हूं तो भी अधूरा हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं तो भी अधूरा समझता हूं, मेरे अंदर वो फ्रस्ट्रेशन हमेशा रहता है, ना मैं किसी को थैंक यू बोल पाता हूं, ना मैं खुद खुश हो पाता हूं। दूसरे को थैंक यू बोलने का, दूसरों के प्रति अपने ग्रेटिट्यूड दिखाने का जो लाभ है वो है कि हम अंदर से बड़े निर्मल होते हैं, वो खुशी हमें झलकती है। खुशी उसमें नहीं होती है कि जो आपको क्या मिला। आप कभी भी देखेंगे, आप काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे कुछ चीजें खरीदने के लिए, कुछ लाने के लिए, कुछ पाने के लिए, और जिस दिन वो चीज आपको मिल जाए, एक डेढ़ घंटे तक, दो घंटे तक, एक दिन तक आपको खुशी होती है, फिर खोखलापन लगता है, फिर लगता है जैसे कुछ खालीपन है, मिल गया तो क्या, अब क्या? अभी तक एक एक गोल था जिसके लिए आप लगे हुए थे, मिल गया फिर खोखलापन है, क्या होगा? इसीलिए अगर खुशी आप ढूंढेंगे क्या नहीं मिला तो जिंदगी भर दुखी रहेंगे। अगर जो मिला उसको रिकॉग्नाइज करें, उसको अप्रिशिएट करें जो है आपके पास, तो यकीन मानिए आपकी लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी क्या आपके पास है, तो गणित भी फेल हो जाएगा। गरीब से गरीब आदमी के पास इतने चीजें भगवान ने दी है, अगर वो काउंट करते चले तो मैथमेटिक भी फेल हो जाएगा। पर हमारे यहां धनी से धनी आदमी भी दुखी है, वो कहता है मेरे पास और भी बहुत कुछ कम है। और इसीलिए हम किसी को भी थैंक यू बोलने को तैयार नहीं होते हैं, दिल से कम होते हैं। बच्चे तो सवाल उठाते हैं, आजकल के नए बच्चे, मां बाप ने क्या किया, वो उनका काम था करना। मानो ये जैसे दुनिया का गॉड है, इन मां बाप बेचारे मजदूर हैं, उनकी वो उनके स्लेव हैं, उनका ड्यूटी था इनकी सेवा करना, कौन सा बड़ा कर दिया, पैदा करके पाल लिया। वो जब खुद मां बाप बनते हैं तब रोते हैं, तब पता लगता है। एक बार ये बच्चों के कैंप था, चिल्ड्रंस कैंप, एक व्यक्ति ने उनको सवाल पूछा, दुनिया में 7 वंडर, जो आश्चर्य की चीज क्या है, 7 वंडर्स। तो बच्चों ने जो रटी रटाई बातें बोला, वो ताजमहल, वो टावर वगैरह वगैरह, एक छोटी सी बच्ची ने हाथ उठाया, लास्ट में बोला बड़े शर्माते हुए, बोला पहला है टू सी, दूसरा है टू हियर, तीसरा है टू स्मेल, चौथा है टू फील, पांचवा है टू टेस्ट, छठा है टू लव, सातवां है टू लव। आपको और हमें भी हंसी आएगी, पर हम इसको सब ग्रांटेड में ले जाते हैं। दुनिया में किसी भी जगह से आप ऐसा कोई टूल, ऐसा कोई चीज ले आइए जो देख सके आंखों को छोड़कर, ऐसा कोई आर्टिफिशियल चीज बनवा के लाइए जो देख सके, जो सुन सके, जो आपकी मीठा और खट्टे के टेस्ट को बता सके कि गोलगप्पे का और रसगुल्ले के स्वाद में क्या अंतर है। ये हमारे पास है, ये ईश्वर ने दिया है, कोई सुपर कंप्यूटर अभी तक टेस्ट नहीं कर पाता, ना कोई प्यार कर सकता है, ना प्यार को एहसास कर सकता है। वो ये आश्चर्य नहीं है जब हम, हमारे में से बहुत सारे लोग हैं जो बाबाओं को बड़ा भगवान मान के पूछते हैं, हम भूल जाते हैं वो ईश्वर ने जिसने आपको खून दिया, जिसने आपको शरीर दिया, वो आपका वो जो बाबा जिसके जिसके लिए आप भगवान भगवान करके भूनते हो, वो एक रत्ती भर के रेत नहीं बना सकता, कैन नॉट मेक ए सैंड। हम अगला स्लाइड देंगे। हम उस व्यक्ति को तो बहुत धन्यवाद करते हैं जो आपको सोने का या हीरे का कोई रिस्ट वॉच देता है, पर जिसने आपको रिस्ट दिया है उसको भूल जाते हैं। तो जिस दिन मैं याद रखूं कि मैं सोने की घड़ी तभी पहन पाऊंगा क्योंकि मुझे किसी ने ये हाथ दिया है, फिर मैं जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहूंगा, मैं बहुत थैंकफुल हूंगा, ग्रेटफुल हूंगा। 24 घंटे अगर इस भावना के साथ जीऊं मेरे पास क्या है। जब मैं अगला स्लाइड किसी के जूता देखता हूं और दुखी होता हूं कि मेरे पास ये महंगे जूते क्यों नहीं है, तब याद करूं कि दुनिया में कितने लोगों के पैर ही नहीं है, अब मेरे पास पैर है, तो मैं उनसे ज्यादा भाग्यवान हूं। और मुझे थैंक्स कहना चाहिए कि मुझे पैर दिए हो। पर पैर होना ऐसा लगता है मानो मेरा राइट है। जो महान लोग हैं, जो नोबेल पर्सन होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनके पास जो कुछ भी है, जो कुछ नहीं भी है, उसमें भी वो ग्रेटफुल है। जो दुष्ट है, बदमाश है, खराब है, उसके पास सब कुछ भी है तो भी वो दुखी है कि दुनिया ने मुझे कुछ नहीं दिया, मां बाप ने कुछ नहीं दिया, भगवान ने कुछ नहीं दिया, पड़ोसी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं किया। एक बड़े रेपुटेड हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट था, जो कि बाद में डिक्लेयर हुआ कि ये इनक्यूरेबल है, अब ये ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दिया कि आप अब 3-4 महीने के मेहमान है, 3-4 महीने आप जी सकते हैं। तो डॉक्टर ने लिखा कि जब भी वो पेशेंट के पास जाता था मिलने के लिए, इस अनाउंस करने के बाद, हमेशा वो पेशेंट बड़ा खुश, और वो जो भी उसके ईश्वर को मानता है, भगवान को मानता है, उसके गुण गाता रहता है, बड़ा खुश नजर आता है, भगवान का नाम लेता है। डॉक्टर ने पूछा कि आपको पता चला है अभी 1-2 महीने में मरोगे, फिर अचानक आपको इतनी खुशी, ईश्वर की प्रार्थना क्यों आ गया? बोला, मैं लकी हूं, मैं भाग्यवान हूं, दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको मरने से बहुत पहले पता लग जाता है कि मैं मरने वाला हूं। आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ टू डाई। बहुत सारे लोगों को मौका ही नहीं मिलता, अपनी मौत के लिए तैयारी भी कर बैठे। मरना तो सबको है, पर मैं किस्मत वाला हूं, आई एम ए लकी पर्सन बिकॉज आई नो व्हेन आई एम गोइंग टू डाई। आई कैन प्रिपेयर फॉर दैट। ये एक अच्छा आदमी का लक्षण होता है, जो हर उल्टी स्थिति में भी, जो गलत परिस्थिति में भी, खराब परिस्थिति में भी ढूंढ लेता है अपने फॉर्च्यून को, अपने भाग्य को। एक दूसरा लोग के सब कुछ होने पर भी वो कोसता रहता है, मेरा भाग्य खराब है। हर आदमी को यह एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो कुछ मेरे पास है उसके लिए दूसरे जिम्मेदार है। इट मे बी गॉड, इट मे बी पेरेंट्स, इट मे बी सोसाइटी, इट मे बी नेशन। मैं एक छोटा सा पार्ट हूं। मुझे इस बात का गर्व हो सकता है कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, पर आपका भाई क्यों नहीं ज्ञानी बन पाया? आपका पड़ोसी क्यों नहीं ज्ञानी बन पाया आपके तरह? उसमें भी तो एक ही मां बाप से पैदा हुए थे आप दोनों, आप दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे, वो क्यों आपके तरह ज्ञानी नहीं बन पाया, आप ही बन पाए? तो समथिंग इज देयर जिसमें आपका कोई अधिकार नहीं है, किसी ने आपको दिया है। जिस दिन यह स्वीकृति अंदर आ जाए, इंसान महान हो जाए। छोटी सी थैंक्स गिविंग की आपको सच्ची घटना सुनाना चाहता हूं। अमेरिका की घटना है। एक बार एक बच्चा, गरीब बच्चा, वो दिन भर कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम करता था और स्कूल जाता था पढ़ने के लिए, पैसा कमा करके। उसके एक दिन उसको बड़ा भूख लगा, उसके पास खाने का कुछ था नहीं, स्कूल जा रहा था, बड़ा भूख लगा, सारा घर ढूंढा, बैग ढूंढा, तो उसको सिर्फ 10 सेंट का एक सिक्का मिला। उसके मां बाप नहीं थे, तो स्कूल जाते हुए सोचा, सामने देखा किसी के घर में एक महिला दरवाजा खोल रखी थी, सोचा कि अंदर जाऊं, हिम्मत करके उनको बोलूं कुछ खाना दे दो, मैं भूखा हूं।
और उसने हिम्मत करके उस महिला के घर गया, पर खाना मांग नहीं सका, ज्यादा शर्म आया, बोला कुछ पीने के लिए पानी दे दो। उस महिला को लगा कि शायद बच्चा भूखा है, तो उसने पानी के बदले एक बड़े ग्लास में दूध भर के दिया। बच्चा बड़ा खुश होकर पी लिया और स्कूल गया। पीने के बाद उसने पूछा कि मैं इसके बदले आपको क्या दे सकूं। महिला ने कहा, नहीं, मेरे मां बाप ने मुझे सिखाया है किसी का कुछ भला करो, उसके बदले कुछ चाहो मत, तुम दूध पिए खुश होकर के जाओ। उसने थैंक्स बोल के गया। कुछ दिनों के बाद, कुछ साल बीत गए, महिला को कैंसर हुआ, बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हुआ, काफी सारे दवाइयां खाया, टेस्ट कराया, ठीक नहीं हुआ, तो उसके एक दूसरे शहर भेजना पड़ा, बड़े शहर में, बड़े हॉस्पिटल में। वहां बड़े बड़े डॉक्टरों के, एक्सपर्ट की सलाह लेनी पड़ी कि क्या किया जाए। उनमें से एक डॉक्टर थे, डॉक्टर हावर्ड केली, उनके पास फोन गया मेडिकल से कि ऐसे एक पेशेंट है, उसको देखने आना है। कहां से है? जब जगह का नाम पता चला, उस डॉक्टर को थोड़ी बेचैनी हुई, वो देखना चाहता था वो कौन है। जब उसने उस महिला को मिला, महिला नहीं पहचान पाई, उस डॉक्टर ने पहचाना और पूरे मेडिकल में बता दिया कि ये मेरी पेशेंट होगी, मैं उसका देखभाल करूंगा। महिला ठीक हो गई। जब बिल आने का वक्त था, डॉक्टर केले ने मेडिकल के एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि उनको बिल देने से पहले पहले मुझे दिखा के देना। केली ने उस पर कुछ लिखा और क्लर्क ने जाकर के बिल पकड़ा दिया ठीक होने पर महिला को। आपको पता है, अमेरिका में जब आप मेडिकल में भर्ती होते हैं तो बिल जब आता है तो कितना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। महिला भी परेशान थी, इतने दिनों से है तो कितने, पता नहीं कितने हंड्रेड थाउजेंड्स की बिल आई होगी। वो बिल खोलने के बाद पढ़ा, साइड में एक जगह सिग्नेचर होकर कुछ लिखा हुआ था, लिखा हुआ था, पेड इन फुल विथ वन ग्लास ऑफ मिल्क, साइन डॉक्टर हावर्ड केली। महान पेड़ों में नहीं फलते हैं। जो महान लोग होते हैं वो पेड़ों में नहीं उगते हैं। वो खास तरह के फर्टिलाइजर डाल करके पैदा नहीं किए जाते हैं। वो आप और हमारे में से कोई होता है जो महान बन जाता है। महानता हमारा गुण है। कोई अपने भूख के कारण एक ग्लास दूध मिला भूखा में, भूखापन में, 20 साल के बाद वो मिलियंस ऑफ डॉलर चुका करके वो एक ग्लास मिल्क के दूध को चुकाता है, अपना ग्रेटिट्यूड बताता है। और कोई हमें करोड़ों लीटर दूध के पैसे दे देता है, कितने सारे हमारे जिंदगी में उपकार कर जाता है, तो भी हम उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगला स्लाइड देखेंगे। जीवन में बहुत सारे कारण आपको मिलेंगे कि आप अपने ग्रेटिट्यूड दिखा सकें, फील कर सकें। आप अपने पड़ोसियों को, अपने परिवार को, अपने मां बाप को, ईश्वर को, नेचर को, पशु पक्षियों को, नदी नाले को, समुन्दर को, आकाश को, हजारों रीजन्स मिलेंगे। और रीजन ढूंढने की जरूरत होती है। जब हम किसी को अंगुलियों में हीरे की अंगूठी पहना हुआ देखते हैं, हम ये जरूर भूल जाते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी अंगुलियां ही नहीं है। हीरे की अंगूठी तो पहनेंगे कहां? तो अंगूठी ज्यादा बड़ा गिफ्ट है बनिस्बत की डायमंड रिंग। हम डायमंड रिंग देने वाले के लिए तरसते हैं, पर जिसने हमें अंगुलियां दी उसके लिए नहीं तरसते। वी डोंट थैंक टू देम। अगला स्लाइड। जब हम छोटी छोटी चीजों में धन्यवाद देना सीखते हैं, अपने एहसान को मानना जानते हैं, अपने ऊपर किए गए एहसान को हम स्वीकार करना मानते हैं, जब हम उस ग्रेटफुलनेस की फीलिंग लेकर जीते हैं तो हमारा दिल ज्यादा सेंसिटिव होता है, हम ज्यादा प्योर होते हैं, हमारा मन ज्यादा निर्मल होता है। हम किसी पर एहसान नहीं करते, जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं कि तुमने मेरे लिए ये किया, मुंह में नहीं दिल में, अगर हम सचमुच दिल से भावना लाएं, इस फीलिंग के साथ जिए कि मेरे जीवन में किस किस का कितना उपकार है, तो मैं ज्यादा प्योर होऊंगा। और जितना मेरा मन निर्मल होगा, जितना मेरा माइंड प्योर होगा, मैं ज्यादा सुखी होऊंगा, तो भी सुखी मिलूंगा। सुखी का एक राज है, सुख होने का, हैप्पीनेस का एक राज है प्योर माइंड। आपके पास सब कुछ हो तो भी आप सुखी नहीं होंगे, अगर आप असंतुष्ट हैं, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है। इसलिए बी ब्लिसफुल, खुश रहना सीखना चाहिए। अगला स्लाइड में आपको कुछ चीजें हमारे जो हिंदू कंसेप्ट में जो ग्रेटफुलनेस का, ग्रेटिट्यूड का क्या भाव है बताना चाहता हूं। पहला तो हम दूसरों के प्रति, वो ईश्वर हो या पशु पक्षी हो, उसके प्रति हम अपने ग्रेटिट्यूड दिखाएं, कृतज्ञता बताएं। इसीलिए हमारे प्राचीन काल में व्यवस्था थी, हर गृहस्थ को, हर हाउसहोल्डर को 5 महायज्ञ करना जरूरी था। क्यों? बोले महायज्ञ इसीलिए करना कि तुम्हारे ऊपर 5 तरह के लोगों का डेब्ट है, कर्जा है। पहला ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ का अर्थ होता है ईश्वर की भक्ति करना। पहला एहसान ईश्वर का है, ईश्वर नहीं चाहता तो ना मेरे पास ये शरीर होता, ना मन होती, ना बुद्धि होती, हो सकता है मैं अंधा होता, हो सकता है मैं बहरा होता, हो सकता है मैं इंसान ही नहीं होता, पेड़ पौधा होता, हो सकता है मैं होता पर खाने के लिए मैं कोई डिजर्ट में, किसी रेगिस्तान में पैदा होता, हो सकता है मैं किसी फुटपाथ पर पैदा होता। दुनिया में करोड़ों लोग फुटपाथ पर पैदा होते हैं, रेलवे स्टेशन पर पैदा होते हैं, जिनके माँ बाप होते हैं पर खाने के लिए कुछ नहीं होता है, वो किसी मेडिकल में या किसी घर में या किसी रूप या छत के नीचे पैदा नहीं होते हैं, पर हम सब अच्छे हॉस्पिटल में या अच्छे घर में या अच्छे माँ बाप के वहां पैदा हुए हैं। और बहुत कुछ हमारे पास है जो ईश्वर ही दे सकता है, कोई साइंटिस्ट, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई ना साइकोलॉजिस्ट, कोई नहीं दे सकता। इसीलिए कहा कि ब्रह्म यज्ञ प्रतिदिन सुबह शाम ईश्वर को धन्यवाद करो। दूसरा बोला देव यज्ञ, जो आहुतियां देते, जो प्राकृतिक चीजें हैं, अग्नि, वायु, फायर, एयर, वाटर, स्काई, फॉरेस्ट, ट्रीज, वो नहीं होते तो आप नहीं होते, तो आप उनके प्रति अपनी ग्रेटिट्यूड, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करो। ये देव यज्ञ, यज्ञ इसीलिए होता है जो अग्निहोत्र। तीसरा बोला तुम्हारे मां बाप पितृ यज्ञ, अपने मां बाप की सेवा करो, उनको सम्मान करो, क्योंकि उनके तुम्हारे जीवन पर एहसान है। फिर बोला अतिथि यज्ञ, अतिथि मतलब गेस्ट नहीं है, मेहमान नहीं है, उसकी चर्चा कभी कर, पर अतिथि का सामान्य अर्थ था प्राचीन काल में, जो लोग सामाजिक कार्यों में लगे हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग, मतलब वो सोसाइटी और सोसाइटी में रहने वाला वो हर व्यक्ति जो सोशल लाइफ के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए उनकी सेवा करो, अतिथियों को रेस्पेक्ट करो। अतिथि मतलब सोशल सर्वेंट। और आखिर में बोला, और उसमें सोशल सर्वेंट में आपके टीचर्स, आपके डॉक्टर्स, आपके इंजीनियर्स, आपके ड्राइवर्स, आपके मैकेनिक्स, हर कोई आ जाता है। और पांचवा बोला भूत यज्ञ, प्राणी यज्ञ, वो इंसेक्ट से लेकर के कीड़े मकोड़े से लेकर के बड़े बड़े प्राणी तक, ये भी आपके, ये नहीं होते तो आपका ये पर्यावरण, ये एटमॉस्फेयर, ये इकोलॉजी इस रूप में नहीं होता कि आप जी सके। बोले इन 5 तरह के चीजों को रोज थैंक्स बोलो, इसी का नाम है अतीत पंच महायज्ञ। पर एक और चीज जो हिंदू फिलॉसफी में बड़ी जरूरी है, दूसरों को के प्रति जरूर ग्रेटफुल बने रहो, पर कभी भी दूसरों से ग्रेटिट्यूड को एक्सपेक्ट मत करो, ये समझना जरूरी है। दूसरों के प्रति धन्यवाद जरूर देना, पर खुद कभी इस आशा में काम नहीं करना कि कोई मेरे प्रति मुझे बताए कि वो कितना एहसान है मेरे लिए। और हम ज्यादातर इस मामले में भी बड़े दुखी मिलते हैं, आपको कहते हुए ज्यादातर लोग मिल जाएंगे, देखो उसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया था, जब आया था मैंने अपने घर में रखा था, मैंने नौकरी दिलाया, मैंने शादी कराया, मैंने वो किया, देखो 5 साल से एक बार पूछता भी नहीं। हम दूसरों के प्रति एहसान कम मानते हैं, अपने एहसान मंदी को दिखाना ज्यादा चाहते हैं, और यही दुख का कारण है। पर दुनिया में जो ईश्वर का रूल है, नियम है, वो बड़ा विचित्र है। वो कहता है तुम किसी पर भी एहसान करो, जरूरी नहीं कि वो एहसान तुम्हारे पर करेगा, उसके 10 गुना एहसान तुम्हारे पर कोई दूसरे करेंगे। वो स्ट्रेंजर हो सकते हैं, वो कोई दूसरा हो सकता है। पर हमारी मुसीबत है, हम दुनिया से सबसे एहसान लेंगे, पर जिसको एहसान करेंगे उससे तो जरूर लेना की इच्छा रखते हैं, और नहीं लेना चाहेंगे तो ये आशा करते मरते दम तक वो मुझे बोलता रहे कि आपने मेरे ऊपर बहुत किया, आपने मेरे ऊपर बहुत किया, आपने। तभी मेरी अंतरात्मा को शांति मिलती रहती है। हम उल्टा होते हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया मेरे प्रति ग्रेटफुल बने, पर हमारा धर्म कहता है कि आप दूसरों के लिए ग्रेटफुल बनो। आप जिस दिन ये एक्सपेक्ट करने लगे तो आपका सारा दान पुण्य कर्म सब चौपट हो गया, पाप हो गया। इसीलिए ये हिंदू धर्म की खास बात है धर्मशास्त्रों में, सेवा प्रदर्शन के लिए नहीं होना चाहिए। सर्विस शुड नॉट बी एग्जीबिशनिस्टिक। दिखाने के लिए दूसरों का भला मत करें। दान देकर के पत्थर लगाने का मतलब आप कैश कर लिया जो लेना था। दूसरों के प्रति भला करके अगर आपने एक आदमी को भी बताया, आपका वो सारा अच्छा काम पानी में गया। पर जिस पर एहसान किया अगर उसने नहीं बताया वो भी गलत है, पर अगर आप ये एक्सपेक्ट करके रहे कि उसने नहीं बताया वो उससे ज्यादा बुरी बात है, ऐसा हमारा हिंदू शास्त्र मानते हैं। You must seek no reward, not even gratitude or thanks from the recipients. मतलब दूसरों के एहसान को मानो, दूसरों पर किया गया एहसान को भूल जाओ, ये greatness का लक्षण है। और एक दो तीन छोटी छोटी बातें करके चलेंगे अगला स्लाइड। जब हम एहसान मानते हैं उसमें हमें कुछ, वो कोई बेकार नहीं जाता, उससे फायदा भी होता है। सबसे बड़ी फायदा तो घरों में, फ्रेंडशिप में, ऑफिस में जितने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स है उसका भी एक मूल कारण है, वी डोंट रिकॉग्नाइज अदर्स वर्क। घर में बीबी कितना परिश्रम करती है हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, बीबी लोग इतना खुश ना हो जाए। पति कितना मेहनत करता है उसको बीबी रिकॉग्नाइज नहीं करे, तो घर में लड़ाई होना स्वाभाविक है। रिलेशनशिप में दरार यहीं से पड़ता है, क्योंकि हम अपने एहसान, दूसरों का जो एहसान हमारे पर है हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। दूसरों को थैंक्स बोलने से, रियल थैंक्स, नकली थैंक्स नहीं, सब्जी अच्छा हो ना अच्छा हो, क्योंकि कहा है थैंक्स बोलना चाहिए, बहुत अच्छी सब्जी है थैंक्स, वो कोई आपसे चाहता ही नहीं कि आप झूठा तारीफ कर रहे हो ना। दुनिया इतना बेवकूफ नहीं है कि आप जले हुए सब्जी को तारीफ करो और बीबी खुश होकर चली जाए। ऐसे कम बेवकूफ मिलेंगे, कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता। पर क्या कंट्रीब्यूशन है मेरे जीवन में, मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का, मेरे मां बाप का, या पत्नी के लिए पति का, अगर हम उसको रिकॉग्नाइज करें छोटी छोटी चीजों में भी, तो फैमिली लाइफ ज्यादा आसान हो जाता है, फ्रेंडशिप में भी, ऑफिस में भी, समाज में भी, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है, समाज, आर्य समाज वगैरह, मंदिरों में भी, जब हम दूसरे के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हैं, हमारा रिलेशन और अच्छा होता है। वो रिलेशन पति पत्नी का हो, पिता माता बच्चों का हो, दोस्तों का हो, भाइयों का हो, सोशल रिलेशन हो, ऑफिशियल रिलेशन हो, ये बड़ी जरूरी है। ये जो दूसरे के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने का नाम ही थैंक्स गिविंग है, यही है ग्रैटिट्यूड दिखाना, नथिंग एल्स। दूसरे ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता, एहसान मानने का सिंपल सा अर्थ है कि दूसरे ने जो किया उसको रिकॉग्नाइज करना, नथिंग एल्स। इंग्लिश में एक छोटी सी कविता है, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा with this prayer in English. God of all bliss, source of all life, giver of all grace, I am grateful for my life, for the breath that sustains life, for the beating of my heart, for the food of this earth that nurtures life. I am grateful for beloved ones who share life with me, those in our world beside me, and those in worlds beyond my knowing. हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों चीजें ऐसी हैं जिनको हम और आप नहीं जानते, पर उनके कारण हमारा जीवन चलता है। जिसने मेडिकल साइंस के बुक्स लिखा, जिन्होंने रिसर्च किया, जिनको आप नाम नहीं जानते, जिनके कारण दवाइयां बनी, जिनके कारण स्टूल्स बने, जिसने ये पंखा निकाला, जिसने लाइट्स निकाला, आप उनके नाम जानते नहीं जानते, पर अगर लाइट वो नहीं निकाले तो आपके घर आज भी अंधेरे होते, वो दवाइयां नहीं बनाते तो आपको आपके बीमारी का इलाज कौन करता। तो करोड़ों लोग वैसे हैं जो हम नहीं जानते, पर उनके कारण हम जिंदा हैं और सुखी हैं, इसीलिए हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं। फॉर द लव ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, विदाउट हुइज देयर वुड बी नो लाइफ, ओ गॉड वी थैंक यू फॉर द मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन, फॉर द ब्यूटी that the eye can see, for the joy that the ear may hear, for the unknown that we cannot behold, filling the universe with wonder, for the expanse of space that draws us beyond the definition of ourselves. We thank you, God, for setting us in communities, for families who nurture our becoming, for friends who love us by choice, for companions at work who share our burdens and daily tasks, for strangers who welcome us into their midst, for people from other lands who call us to grow in understanding, for children who lighten our moments with delight, for the unborn who offer us hope for the future. We thank you, O God, for this day, for life, and one more day to love, for opportunity, and one more day to work for justice and peace, for neighbors, and no more person to love and by whom be loved, for your grace and one more experience, for your presence, for these and all blessings, we give you thanks, eternal loving God. Om Shanti.